أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. درود بجه محمد وعلى محمد با. آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. خداوند عالم نے انسان کو دوسری مخلوقات کے ساتھ جو خلق فرمایا ہے، تو انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان کچھ چیزیں کامن ہیں، کچھ صفات کامن ہیں، کچھ چیزوں میں انسان ان سے مشابہت رکھتا ہے اور کچھ چیزوں میں ان سے الگ ہے. کچھ خاص خصوصیات اور صفات کا حامل ہے، اور وہ خاص خصوصیات اور صفات انسان کو دوسرے تمام موجودات سے، دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز اور الگ بناتی ہیں. جو چیز انسان میں اور دوسری مخلوقات میں مشترک ہے، کامن ہے، وہ انسان کا نباتی یا حیوانی وجود ہے. دیکھیے، چار قسم کے وجود ہیں. جمادات ہیں، یعنی پتھر، ظاہری طور پر بے جان چیزیں، جن میں گروتھ کا، جن میں رشد کا، نمو کا، ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرے ہیں نباتات، یعنی پودے، درخت. ان میں جمادات کی بنسبت ایک اور اضافی صفت پائی جاتی ہے کہ یہ گروتھ کرتے ہیں. پودا چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے، پھر اس کے پھل پھول آتے ہیں، یعنی گروتھ کرتا ہے، نشو نما ہوتی ہے اس کی. اس کے بعد حیوانات ہیں، یعنی حیوانات ایک اور درجہ آگے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ حرکت بھی کرتے ہیں، وہ ان میں موومنٹ پائی جاتی ہے، ان میں تحرک ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ان میں احساسات پائے جاتے ہیں. پھر اس سے ایک اور درجہ آگے انسان ہے. انسان میں نباتات کی، حیوانات کی خصوصیت موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی صفات بھی ہیں یا خصوصیات کا حامل ہے انسان، جو اسے دوسرے تمام مخلوقات سے الگ شو کرتا ہے یا اسے ممتاز بناتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ فیلنگس یا جذبات یا احساسات جانوروں میں پائے جاتے ہیں، ان میں بھی خوف ہوتا ہے، ان میں بھی اپنی اولاد کی محبت پائی جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھو گھروں میں جو آپ کے پیٹ اینیمل ہوتے ہیں، جو پالتو جانور ہوتے ہیں، جب ان کے بچوں کی طرف کوئی قدم بڑھاتا ہے تو اس کی ماں جو ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو آگے بڑھتی ہے، حملہ کرتی ہے. بلی میں، جانوروں میں، پرندوں میں، یعنی وہ جانور جو معمولاً انسان کے گھروں میں پالے جاتے ہیں یا رہتے ہیں، یہ احساسات ان میں پائے جاتے ہیں. لیکن ان احساسات کے ساتھ ساتھ جو چیز انسان کو دوسرے تمام موجودات سے ممتاز کرتی ہے، الگ بناتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کی عقل ہے. اور اس کا ایک اور وہ پہلو کہ جس کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، کہ خدا نے اس کی تعریف بیان کی ہے، وہ اس کا مادی اور روحانی پہلو ہے. یعنی اگر ایک انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ایک نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو صرف ایک نوجوان نہیں ہے، اس کے اندر شیطانی صفات بھی موجود ہیں، اس کے اندر رحمانی صفات بھی موجود ہیں. उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर मुसबत सोच भी मौजूद है, उसके अंदर मनफी सोच भी मौजूद है। बज़ाहिर सोचने में एक इंसान नज़र आ रहा है, उसमें एक फरिश्ता भी मौजूद है और एक गुनहगार इंसान भी उसके अंदर छुपा हुआ है, यानी दोनों चीज़ उसके अंदर। और ये इंसान का वो पहलू है कि जो दूसरे तमाम मखलूक से उसे मुमताज़ बनाता है, उसे सुपर बनाता है। अगर अगर यह हदीस में पेश करो, उस पर गौर करें आप, तो फिर हमें इंसान का वो सुपर पहलू, उसका मुमताज़ पहलू सामने आएगा। हदीस में कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को खल किया और उनको सिर्फ अम्र किया है, उन्हें सिर्फ ऑर्डर दिया, उन्हें सिर्फ हुक्म दिया है, वो उस हुक्म की तामील में अदल से लेकर अब तक मौजूद हैं, उससे एक लम्हे के लिए भी सरपेची नहीं कर सकते, उससे मुखालफत नहीं कर सकते। हैवानात को शहवत दी है, लेकिन इंसान को शहवत भी दी है और अकल भी दी है। अब अगर इंसान की शहवत उसकी अकल पे गालिब आ जाए तो इंसान जानवरों से पस्त है, और अगर इंसान की अकल उसकी शहवत को और उसके ख्वाहिशात को कंट्रोल कर ले, गालिब आ जाए, उसे अपने इख्तियार में ले ले, तो इंसान फरिश्तों से अफजल हो जाएगा। अब यहाँ से अंदाज़ा होता है खुदावंदे आलम ने जो इंसान को दो पहलू दिए, मादी और रूहानी, या मादी या मानवी जिनको कहा जाता है, जिस तरह हम कहते हैं कि एक लफ्ज़ होता है उसका माना होता है, माना उसके अंदर छुपा हुआ होता है, लिहाजा रूहानी दुनिया को मानवी दुनिया कहा जाता है। क्यों मानवी दुनिया कहा जाता है? इसलिए कि ये ज़ाहिरी हमारी दुनिया में हमारी ज़िंदगी के अंदर पाई जाती है, रूहानी या मानवी ज़िंदगी। मसलन मैं जब आपके सामने एक लफ्ज़ कहूँ तो आप कहेंगे इसका क्या माना है, मुझे समझ में नहीं आया, यानी इसके अंदर जो छुपा हुआ एक ख़ास पहलू है वो मेरे सामने बयान करें, माना उसको कहा जाता है। लिहाजा रूहानी ज़िंदगी को मानवी ज़िंदगी भी कहा जाता है, यानी कि ज़ाहरी ज़िंदगी जिसमें हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वालदेन, माँ बाप, दोस्त, क्रिकेट, स्पोर्ट, बहुत सारी चीज़ें, शादी, गम, सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमारी रूहानी ज़िंदगी इसी में छुपी हुई है, और यही वो ज़िंदगी है जो हमें दूसरों से मुमताज़ बनाती है। इंसान का एक और वजह इम्तियाज़ जो उसके और दूसरों दूसरी मखलूक़ात के दरमियान उसे मुमताज़ बनाता है, वो उसका आकल और अक्लमंद होना है, कि खुदावंद आलम ने इंसान को अकल जैसी नेमत से नवाजा है। गो के जो दर्स का ऐलान किया गया था वो एक ख़ास पहलू में था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा उमूमी नौइयत का किया है, ताकि हम चूँकि ये पहला आपका दर्स है और पहली क्लास है, लिहाजा चाहेंगे कि हम पहले एक मजमूई तौर पर एक गुफ्तगू करें, ताकि हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, यानी तौहीद का इंसानी ज़िंदगी पे असर, उसकी कुछ अहमियत और इम्पोर्टेंस हमें मालूम हो सके। दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। खूब ज़ाहिर बात है, जब हम कहते हैं तौहीद, तो तौहीद का मतलब यह है कि दीन में शामिल है, तो खुद दीन क्या है, दीन किसे कहते हैं? बात मुश्किल तो नहीं मेरी, समझ में आ रही है सबके? मैं बाद में सवाल पूछूंगा फिर, ठीक है? हाँ भाई रजा, ठीक है, दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। खुब दीन का क्या माना है? दीन का माना जजा देना या इताअत, और दूसरे मुख्तलिफ माना बयान किए गए, लेकिन दीन का बुनियादी माना इताअत, पैरवी, किसी को ओबे करना या किसी को उसकी जजा देना। इसीलिए हम कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, सूरह फातिहा में कहते हैं, यानी रोज़े जजा का मालिक है, यानी जिस दिन हर इंसान को उसका रिजल्ट दिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा कि तुमने क्या किया था, जजा का दिन है आज। अगर अच्छा अमल किया है तो अच्छी जजा है, और अगर खुदा न खासा बुरा अमल किया है तो उसकी बुरी जजा है। ये दीन का ज़ाहिरी माना है। उसके बाद दीन, जब हम दीन की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक आइडियोलॉजी का लफ्ज़ आता है, जिसको जहाँबीनी या मुताले कायनात कहा जाता है। ये दोनों लफ्ज़ चूँकि मुश्किल हैं, थोड़े से खालिस उर्दू में हैं, लिहाजा हम इनसे सफ़र नज़र करते हैं। आइडियोलॉजी का एक लफ्ज़ चूँकि आप हजरात के लिए भी यूज़ टू होगा, लिहाजा उसी को यूज़ करेंगे। आइडियोलॉजी यानी इंसान का अपने मालिक और तमाम इंसानों के खालिक के बारे में एक नज़रिया रखना। आइडियोलॉजी यानी इंसान का अल्लाह के और तमाम दुनिया के खालिक और क्रिएटर के बारे में एक नज़रिया रखना, और उस नज़रिए के मुताबिक अपनी लाइन ऑफ एक्शन को इस दुनिया में मुतय्यन करना कि मुझे किस तरीके से इस दुनिया में रहना है। मिसाल के तौर पर ये तो बहुत ही सादी सी और बिल्कुल नेचुरल सी बात है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके जहन में बहुत सारे काम होते हैं, तो बाज़ औक़ात आप उन्हें अपने पेपर पे लिख लेते हैं, मुझे कॉलेज जाना है, वापसी में कोचिंग जाना है, वहाँ से अम्मी ने फलां काम कहा है, फिर मुझे नोट्स लेने जाना है, फोटोस्टेट करानी है, फिर उसके बाद स्पोर्ट के लिए जाना है, फिर जिम जाना है, उसके बाद आना है, फिर कंबाइन स्टडी है, फिर दोस्त ने बुलाया है, गाड़ी का काम है, बाइक का काम, मुख्तलिफ काम है। बाद अवत आप उन्हें पेपर पे लिख लेते हैं, बाद अवत आप अपने जहन में उनको एक शक्ल दे देते हैं कि मुझे पहले कौन सा काम करना है। फिर जब आप उन्हें अपने जहन में मुरतब कर लेते हैं तो फिर आप अपने लिए एक लाइन ऑफ एक्शन का इंतखाब करते हैं कि मुझे किस रास्ते से कहाँ जाना है, पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है, किस काम को कितना टाइम देना है। ऐसा तो नहीं कि जहाँ कम टाइम देना हो ज़्यादा टाइम दे दूँ, और जहाँ ज़्यादा टाइम देना चाहिए वहाँ कम टाइम दूँ, मुझे कॉलेज में 6 घंटे देने हैं तो वहाँ 2 घंटे दूँ, और मुझे स्पोर्ट को और अपने जिम को जो है वो 1 घंटा देना है तो वो 4 घंटे दूँ। लिहाजा इंसान अपने कामों को अपने जहन में मुरतब करता है या अपने पास अपनी डायरी में नोट करता है, और फिर उनके लिए एक लाइन फॉर एक्शन, एक हिकमत अमली, एक राह अमल और एक रास्ता मुतय्यन करता है। आइडियोलॉजी भी यही चीज़ है, यानी इंसान का एतकाद रखना, अकीदा रखना अल्लाह के बारे में, क्रिएटर के बारे में, अपने क्रिएटर और पूरी दुनिया के क्रिएटर, यानी इंसान इस दुनिया से अलग नहीं, इंसान इस यूनिवर्स से अलग नहीं, अगर यूँ कहूँ ज़्यादा बेहतर है, लिहाजा वो इसके बारे में अकीदा रखता है और इस आइडियोलॉजी के मुताबिक एक अमल अपनाने की कोशिश करता है। बल्कि अगर यूँ कहूँ कि आइडियोलॉजी दर हकीकत इंसान के अकायद का वो सिस्टम है कि जिसके तहत जब इंसान किसी सिस्टम को कबूल करता है तो फिर से ओबे करता है, यानी इंसान अपने अकीदती सिस्टम को, अपने अकायद के सिस्टम को कबूल करता है और उसके बाद उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। बात वाज़ है, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइडियोलॉजी यानी इंसान का, इंसान के अकायद और नज़रियात का ऐसा सिलसिला जो पूरी यूनिवर्स के बारे में हो, पूरी जहान हस्ती आलम हस्ती के बारे में हो, और उसके मुताबिक इंसान एक अमल अंजाम दे। ये बात वाज़े हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आइडियोलॉजी को हमने कहा ये अकायद का एक सिस्टम है, यानी इंसान, अच्छा ख़ुद अकीदा क्या है, अकायद किसे कहते हैं, इसके पहले लफ्ज़ी तशरीह कर दूँ। अकीदा या अकायद अग़ से है, अकीदा उसकी सिंगुलर फॉर्म है, अकायद उसकी जमा है। अकीदा अग़द से निकला, ऐन काफ दाल अग़द, इसलिए निकाह को अरबी ज़बान में अग़द कहा जाता है। अग़द यानी गिराह लगाना, नॉट लगाना। क्या मतलब, यानी जब आप ये कहते हैं कि मैं एक आइडियोलॉजी रखता हूँ, मैं एक अक्लमंद आदमी हूँ, मैं अपनी अकल को तस्लीम करता हूँ, उस अकल के मुताबिक मैंने एक आइडियोलॉजी कबूल की है, एक्सेप्ट की है, और उसके मुताबिक मैं एक अमल अंजाम दे रही हूँ। नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान हो, ख्वाह वो बेदीन ही क्यों ना हो, दर हकीकत वो एक आइडियोलॉजी रखता है। यानी कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा, अगर वो इंसान जिसके पास आइडियोलॉजी नहीं है, यानी इसका मतलब ही उसके पास अकल नहीं है, वो बेअकल बेशऊर इंसान है, दर हकीकत वो दीवाना है। दुनिया का हर इंसान एक आइडियोलॉजी रखता है, या उसकी आइडियोलॉजी मुस्बत होगी, पॉजिटिव होगी, या जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं खुदाई आइडियोलॉजी होगी, इस्लामी आइडियोलॉजी होगी, या उसकी आइडियोलॉजी बेदीनी की आइडियोलॉजी होगी। वो कहेगा नहीं जनाब, दुनिया जो है एक बिग बैंग थी, एक धमाका था, खुद ब खुद अचानक जो है गैसेस ने आपस में रिएक्शन शुरू किया और एक धमाका हुआ और पूरी दुनिया, यूनिवर्स वजूद में आ गई। ये भी क्या आइडियोलॉजी है। लिहाजा वो उस आइडियोलॉजी के पीछे उसके जो नज़रियात हैं उनके मुताबिक अमल करता है, लिहाजा वो नमाज़ नहीं पढ़ता, वो रोज़ा नहीं रखता, वो दीन को नहीं मानता, वो दीन के जितनी किताबें हैं, दीन के आसार हैं, उन सब का इनकार करता है, वो भी क्या आइडियोलॉजी रखता है। और जो दीनदार है, खा वो किसी भी रिलीजन का मानने वाला हो, एक आइडियोलॉजी रखता है, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक वो अमल अपनाता है। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियंस हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी है, उसके मुताबिक वो अपना अमल, अपनी इबादत, अपना दीन उसको ओबे करते हैं। इसी तरह यहूदी हैं, इसी तरह बुद्धिस्ट हैं, इसी तरह दूसरे अफराद हैं। अभी फिर बहस नहीं हो रही कि कौन सही है कौन गलत है, अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं आइडियोलॉजी की। मतलब अकीदा अग से है, यानी दो चीज़ों का आपस में मिला देना। जब आप ये कहते हैं कि मैं आइडियोलॉजी रखता हूँ, मैं अकीदा रखता हूँ, मेरे पास एक सिस्टम ऑफ अकायद है, लिहाजा इसका मतलब ये है कि आपका और आपके यूनिवर्स का, आपका और आपके खुदा का एक रابطہ बरकरार हो गया। इसलिए कि अकीदा अकायद यानी कायनात के हकायक, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में इंसान का एक पैक्ट होना, एक माहिदा होना, एक राबदा बरकरार होना। इसीलिए मैंने कहा कि जो बेदीन है उसके पास भी एक अकीदा होता है, जो बेदीन है उसके पास भी एक आइडियोलॉजी होती है। दुनिया में अगर कोई शख्स है कि मेरे पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, या वो मुर्दा है, या वो बेवकूफ़ है, उसके पास अकल नहीं है, वो लाशऊर इंसान है, वो बेशऊर इंसान है, वो बेअकल इंसान है। दुरुद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जब हमने कहते हैं कि आइडियोलॉजी है, अकायद हैं, तो खुदावंद आलम ने जितने दीन भेजे उनमें तीन पॉइंट्स मुश्तरक थे, तीन नुकात मुश्तरक थे, कॉमन थे। पहली चीज ये कि कायनात के या यूनिवर्स के क्रिएटर या खालिक पर अकीदा, उसके भेजे हुए नुमाइंदों पर अकीदा रखना, और तीसरी चीज़ ये कि इस दुनिया का अंजाम क्या होगा और हमें रिजल्ट किस शक्ल में मिलेगा। यानी ये बुनियादी सवाल हैं। इसलिए हदीस में है कि जिस शख्स के पास तीन सवालों के जवाब आ जाएं वो कामयाब इंसान है। मिन ऐन इला ऐन फी ऐन। मिन ऐन कहाँ से आया है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी वही मबदा शनासी जिसको कहते हैं, यानी खुदा का अकीदा रखना। तुम कहाँ से आए हो, मिन ऐना कहाँ से हो, इला ऐन तुम्हारा एंडिंग पॉइंट क्या है, तुम्हारा इख्तिताम क्या है, तुम्हारी मंजिल कहाँ है, यानी कयामत। फी ऐन कहाँ खड़े हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तुम्हारी, क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्यों भेजे गए हो, क्या करना है। ये तीन बुनियादी सवाल हैं जो हमेशा से इंसान के जहन में मौजूद रहे हैं। लिहाजा आप देखें, मिन ऐन कहाँ से आयो, खुदा, इला ऐन कयामत, फी ऐन कहाँ खड़े हो, दुनिया में तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन ये वो बुनियादी नुकात हैं जो तमाम अदियान में, यहूदियत में, ईसाइयत में, इस्लाम में मौजूद हैं। लेकिन मकतबे तशय्यो में दो चीज़ें और ऐसी हैं कि जो इन्हीं से रिलेटेड हैं। यानी जब हम बात करते हैं आइडियोलॉजी की, और जब आइडियोलॉजी में हम बात करते हैं कि तौहीद यानी खुदा का अकीदा, नबूवत का अकीदा, कयामत का अकीदा, जब हम कहते हैं खुदा का अकीदा, तो फिर बात आती है कि फलां को ये क्यों मिला, फलां को ये क्यों नहीं मिला। तो हम ये कहते हैं जब आप खुदा को एक मान रहे हैं, वाहिद मान रहे हैं, उसकी तौहीद के कायल हैं, तो उसके साथ साथ एक और टॉपिक रिलेटेड है जो उसके अदल से, अदल के नाम से है। यानी अदल हमारे मकतब तशय्यो के, मकतब तशय्यो की तालीमात का एक खासा है, या बल्कि यूँ कहूँ कि हमारी, हम सिर्फ हमारे ही मकतब ने उसको पेश किया है। यानी खुदा आदिल है, खुदा ने जो तकसीम की है वो भी अदालत पर मबनी है, खुदा किसी पर जुल्म नहीं करता। उसके साथ साथ क्या नबूवत हमेशा के लिए थी, नहीं, नबूवत हमेशा के लिए नहीं थी, एक वक्त आया कि नबूवत का सिलसिला रुक गया। तो अब इंसान की हिदायत कौन करेगा, इंसान को कौन सही वे पे लेके आएगा, क्योंकि ये अंबिया जितने भी 1,24,000 अंबिया जो आए, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। इन्होंने दावा किया कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है अकायद का, आमाल का, अहकाम का। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसान को खुशबख्त करना चाहा, इंसान को निजात दिलानी चाहिए, इंसान को कहा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए हैप्पी रह सकते हो, खुश रह सकते हो, वगैरह वगैरह। अब अगर अम्बिया के बाद सिलसिला रुक गया तो अब इंसान को कौन हिदायत करेगा? तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि वही मोहम्मद का सिलसिला है। इसलिए हमारे तीन उसूलुद्दीन में दो चीज़ और शामिल हैं, तौहीद के साथ अदल शामिल है और नबूवत के साथ इमामत शामिल है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरी चीज़ ये कि तौहीद, अद, नबूवत, इमामत, क़यामत, इनको हमारे यहाँ उसूल दीन का नाम दिया गया है। उसूल दीन यानी दीन की बुनियादें, उसूल बुनियादों को कहा जाता है, यानी दीन की बुनियादें। जिस तरह मैंने कहा कि इंसान का एक अकीदा होता है, कि आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक वो अपने आमाल को, अपने कामों को अंजाम देता है। तो जब ये उसूल दीन है तो इसके मुताबिक इंसान कुछ आमाल भी अंजाम देगा, जिनको फुरू दीन का नाम दिया गया है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए एक तोहफा है कि ये उसूल दीन है, ये फुरू दीन है, ताकि तुम्हारी आइडियोलॉजी और तुम्हारा अमल दोनों एक साथ हों। मिसाल के तौर पर हर इंसान जो अमल अंजाम देता है, आप देखें वो जिस महफिल में जाता है उस महफिल के मुताबिक लिबास पहनता है। ऐसा तो नहीं होता कि वो किसी महफिल में जा रहा है, मजलिस में जा रहा है तो बहुत ही जर बर्क और चमकीले और भड़कीले और बहुत ही इस किस्म के लिबास पहन के जाएगा, या अगर मजलिस किसी शादी में जा रहा है, फंक्शन में जा रहा है तो काला लिबास पहन के जा रहा है। मिसाल के तौर पर ऐसा तो नहीं होता। इंसान जो अमल अंजाम देता है उसके अंदर एक यूँ कहूँ एक कोऑर्डिनेशन पाई जाती है कि मैं किस महफिल में जा रहा हूँ, किस सोसाइटी में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाके क्या करना है। ऐसा तो नहीं होता इंसान क्लास में जाके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, ठट्टे लगाने लगता है, ऐसा तो नहीं होता। ये दर्स में आता है तो जनाब लेट जाता है, आराम करने लगता है, बल्कि जिस किस्म का माहौल होता है वैसे ही वो अमल अंजाम देता है। लिहाजा इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी सराउंडिंग में जो भी उसका माहौल होता है उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। गर्मी होती है तो उसी मुनासबत से लिबास पहनता है, सर्दी होती है तो उसी मुनासबत से उसी तरीके से अपने आप को सेफ करने की कोशिश करता है, स्वेटर पहनता है, जैकेट पहनता है, बारिश होती है तो छतरी लेने की कोशिश करता है, बरसाती पहनता है, या मिसाल के तौर पर कोई और मौसम होता है तो कहते हैं आज हॉक्स पे चलते हैं, पिकनिक का मौसम हो रहा है, आज जो है वो सूरज नहीं निकला, वगैरह वगैरह। अकायद उसूलुद्दीन और फुरुद्दीन भी बेईन ही बिल्कुल ऐसे ही हैं। यानी इंसान जिस तरह अपनी सराउंडिंग्स को देखकर अपने आप को और अपने अमल को और अपनी एथिक्स या अखलाकियात को सही करता है और उनको मुरतब करता है, इसी तरह उसूल दीन यानी सिस्टम ऑफ अकायद, अकीदती सिस्टम इंसान का, और उसी के बिल्कुल मुताबिक इंसान का अमल इख्तियार करना। बात वाज़े नहीं? यानी जिस तरह इंसान अपने माहौल को देखकर अपना लिबास मुंतखब करता है, सर्दी है, गर्मी है, खजा बहार जैसे भी मौसम है, उसी तरह बेईन ही दोनों में कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। ऐसा तो नहीं होता बाहर सख्त गर्मी पड़ रही और आप देखें कि कोई नौजवान जो है वो ओवर कोट जैकेट और स्वेटर पहन के बाहर आ जाए तो आप उसकी अकल पर शक करेंगे, ये बहुत सर्दी हो रही हो वो टी शर्ट पहन के बनियान पहन के बाहर आ जाए, नहीं हो सकता। यानी जैसे माहौल है वैसे ही उसके कपड़े होंगे उस मौसम के मुताबिक। लिहाजा इंसान का अकीदती सिस्टम, अकायद का सिस्टम, लिहाजा उसी के बिल्कुल ऐन मुताबिक फुरूए दीन हमें दिए गए, यानी बिल्कुल उस फुरूए दीन के मुताबिक हमें अमल करने के लिए कहा गया है, ताकि दोनों में कोऑर्डिनेशन हो, एक हम आहंगी पाई जाए। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात यहां तक वाज़े। अब आते हैं दोबारा इंसान पर। इंसान को हमने कहा था कि इंसान में रूह भी मौजूद है और इंसान में जिस्म भी मौजूद है, मादा भी है और रूहानियत भी है, और ये इंसान का एक तुर्र इम्तियाज़ है, एक वजह इम्तियाज़ है जो उसे दूसरी तमाम मखलूक से खुसूसन जानवरों से मुमताज़ करता है। ये अकल है कि जो उसको दूसरे जानवरों से अलग साबित करती है। अब गाय को भूख लगे, गधे को भूख लगे, घोड़े को भूख लगे, उसको जहाँ चारा नजर आता है वहीं घुस जाता है, वही देखता हलाल है हराम है, किसका बाग है, किसका खेत है, वो उसका पेट भरना है। लेकिन इंसान के लिए कहा गया कि नहीं, जब खाना खाओ तो देखो ये हलाल है या हराम। ऐसा तो नहीं कि इसमें تم نے کسی کا حق غصب کیا ہے یا تم نے کسی کا حق مارا ہے، یہ عقل ہے جو اس کو ممتاز بناتی ہے. دوسری چیز جو انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے وہ اس کی جو فطری خواہشات ہیں، وہ اس کی جسم، میٹر اور اس دنیا تک محدود نہیں ہیں. یعنی اس کو جو صفات دی گئی ہیں، اس کو جو خداوند نے خواہشات دی ہیں، یہ خواہشات انسان کو عالم آخر تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں. یعنی انسان اپنی ان صفات کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا کا سامان کر سکتا ہے. یعنی آپ کو یہ دنیا دی گئی ہے مختصر، جس کی لمٹ آپ کو نہیں معلوم. مختصر معلوم ہے لیکن لمٹ نہیں معلوم کہ کتنے اس کی لمیٹیشن کہاں ہیں. میں آج 16 سال کا ہو گیا ہوں، میں آج 20 سال کا ہو گیا ہوں، میں 22 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن یہ زندگی کب اینڈ ہوگی، کب ختم ہوگی مجھے نہیں معلوم. لیکن اسی زندگی میں ایسی صفات موجود ہیں کہ جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشبخت کر سکتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں لے جا سکتی ہیں، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی بنا سکتی ہیں. اور یہ بات چونکہ موضوع سے متعلق نہیں ہے، صرف اشارہ کرتا ہوا گزار رہا ہوں. بہت کم انسان ہیں کہ جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ بہت کم انسان ہیں کہ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، ولّہ تمام انسان اپنے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد ان کا جیسا لیول ہوگا، ان کے جیسے اعمال ہوں گے، جنت میں ان کو فٹ کر دیا جائے گا. بہت اچھے اعمال ہوں گے، بہت پرفارمنس ہوگی، بہت کارکردگی ہوگی، تو بہت اعلیٰ درجہ ہوگا، جوار محمد والے محمد میں جگہ ملے گی. سادہ سا کوئی ہوگا، سادہ سا مسلمان، سادہ سا شیعہ ہوگا، اس کو نہلائے دھلائے کر کے، پٹائی وٹائی کر کے، نہلائے دھلا کے کپڑے پہنا کے جنت میں. چلو بھی تم بچے ہوتے ہیں نا، مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، اماں پھر نہلاتی ہیں، پھر دھلاتی ہیں، چینج وینج کیے، پھر تھوڑے بعد دیکھا کہ نہیں پھر گندے ہو گئے، پھر نہلائے دھلایا. پھر تو وہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ انسان جو گناہوں کی وجہ سے نجس، آلودہ، گندا ہو گیا تھا، اب خدا کہے گا کہ تم چونکہ پاک ہو کے نہیں آئے ہو، توبہ نہیں تم نے نہیں کی ہے، لہٰذا اب یہاں پر تمہیں آگ کے ذریعے سے، ڈنڈے کے ذریعے سے، عذاب کے ذریعے سے تمہیں دھلایا جائے گا، تیار کیا جائے گا. جب انسان بن جاؤ گے تو پھر جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی. درود بھیجے محمد وال محمد. تو انسان میں یہ صفات موجود ہے. پھر تیسری جانب، انسان میں جستجو کی، تجسس کی ایک صفات موجود ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے سے، کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے. اس لیے آپ دیکھیں چھوٹے بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے میکینزم کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. مثال کے طور پر ایک بچے نے اپنے پہلے دن روزہ رکھا تو بڑی پیاس لگ رہی تھی اس کو، تو ہم نے والد سے پوچھا کہ روزہ کب کھلے گا، انہوں نے کہا 7 بجے. تو بیٹے نے کہا ابھی کیا بج رہا ہے، اس نے والد نے کہا 5 بج رہے ہیں. وہ گیا تھوڑی دیر بعد گھڑی میں 7 بجا کے آ گیا، اس نے کہا اب تو 7 بجے نا، اب تو روزہ کھل گیا. یہ مثلا ایک گاڑی، یہ لطیفے کے طور پر ہے لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت پوشیدہ ہے. یہاں سے نکلے گاڑی میں، ریڈیو آن تھا، تو کہنے لگے کہ جب حیدرآباد کے قریب پہنچ گئے تو ریڈیو میں سے آواز آئی، جب خبروں کا وقت ہو، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہم کراچی اسٹوڈیو سے مخاطب ہیں. اس نے کہا ابو یہ تو جھوٹ بول رہی ہے. کہ لیں کیسے؟ کہ لیں ہم تو حیدرآباد میں ہی، کہہ رہی ہے یہ تو کراچی ہے. یعنی بچے کے ذہن میں وہ میکینزم نہیں آتا، لہذا ہم بہت سارے میکینزم کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن وہ میکینزم موجود ہوتا ہے. اور انسان میں تجسس چاہتا ہے، یہ پوچھے، تجسس حاصل کرے اور علم حاصل کرے. اور یہاں پر میں ایک اور، چونکہ آپ سب نوجوان ہیں، ایک اور بات کہوں. دیکھیے کوئی بھی نوجوان گناہ کو گناہ سمجھ کر انجام نہیں دیتا. چلو یہ گناہ ہے، چل کے گناہ کرتے ہیں، چلو چل کے امام حسین کو رلاتے ہیں، چل کے آج امام حسین حضرت علی کو اذیت کرتے ہیں، مثال کے جا کے آج حضرت فاطمہ کو رلاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، امام زمانہ کو رلاتے ہیں. کوئی بھی نوجوان گناہ کو اس لیے انجام نہیں دیتا، بلکہ وہ گناہ کو صرف نادانی میں، انجانے میں، تجسس میں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس ویب سائٹ میں کیا ہے، اس کلپ میں کیا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں جگہ جاؤ، تجسس میں اپڈیٹ کرنے کے چکر میں وہ کیا ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے. لہذا انسان اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے، اور انسان میں یہ خدا نے، انسان میں خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپڈیٹ کرے، تجسس جستجو، اور یہ چیز اسے مزید آگے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لہذا ان تمام مختلف نکات کی روشنی میں جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے، دین، دین کا معنی، سسٹم آف عقائد، اور اس کے مطابق انسان کا عمل انجام دینا، جیسے کام زندگی میں انسان ہوتا صبح اٹھتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور ذہن میں ون بائی ون پرائرٹی دیتا ہے کہ جناب آپ نے کون سا عمل کون کب انجام دینا ہے، کتنا ٹائم دینا ہے، اس کے لیے ایک لائن آف ایکشن معین کرتا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، بائک سے جانا ہے، بس سے جانا ہے۔ اسی طرح اصول دین، فروع دین، دین کی بنیادیں اور دین کے شاخیں، اصول شاخیں اور فروع یعنی انسان کی، مزہ چاہتا ہوں، دین کی شاخیں، یعنی جو آپ نے سسٹم اوقات آئیڈیالوجی کو اپنایا ہے اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی، دوست بہت سے موجود نہیں تھے، کہ جیسا موسم ہوتا ہے ویسا ہی آپ لباس پہنتے ہیں، گرم موسم ہے تو گرم موسم کے لحاظ سے لباس ہوتا ہے، سرد موسم ہے تو سرد موسم کے لحاظ سے۔ اسی طرح جو آپ نے آئیڈیالوجی اپنائی ہے، اصول دین اپنائے ہیں، اسی کے عین مطابق بالکل آپ عمل انجام دیتے ہیں، جن کو فروع دین کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اصول دین میں آتے ہیں توحید کی طرف، اور انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میں آپ کی توحید کو بالکل کمپلیٹ کر دوں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ خوب، توحید یعنی کسی کو ایک ماننا، کسی کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کے وجود کو قبول کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی، اس نے اپنی زندگی کو کسی سے نہیں مانگا، اس نے کسی سے مدد حاصل نہیں کی، دنیا کو بنائے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جب اس میں ڈیٹیلز میں جائیں گے، ہم تفصیل میں جائیں گے، تو پھر اس کو بیان کریں گے۔ یہ توحید ہے، یعنی خدا کو ایک ماننا۔ اور ایک ایکسپیریمنٹ تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمیں یاد ہے کہ پرزم کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا، اور ایک لائٹ کا ایکسپیریمنٹ تھا۔ وہ ایکسپیریمنٹ ایسے تھا کہ پین ہے کسی کے پاس؟ وہ پہلے ایکسپیریمنٹ بتا دوں آپ کو۔ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ اگر وائٹ بورڈ ہوتا زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال آپ نے ایک سورس سے، ایک ٹارچ سے، کسی بھی سورس سے ایک لائٹ روشن کی، مثلا یہاں سے لائٹ روشن کی آپ نے، اس کو ٹارچ کو جلایا ہے۔ اب اگر اس کا منہ ادھر ہوگا تو لائٹ ادھر جائے گی، ادھر ہوگا اس اینگل پہ ہوگا تو اس اینگل پہ لائٹ جائے گی۔ اب آپ نے اس کو اس اینگل پہ رکھا ہے، اور جب یہ لائٹ یہاں گئی تو آپ نے اس کے سامنے ہمیں ایک مرر رکھ دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ لائٹ جس اینگل سے جائے گی اسی اینگل سے ریفلیکٹ ہوگی، اب وہ ریفلیکٹ ہوئی اس طرف نیچے کی طرف۔ اب جب یہاں پہ پہنچی تو آپ نے ایک اور یہاں پر آئینہ میرر رکھ دیا، لہذا وہ یہاں پہنچی، یہاں سے دوبارہ وہ ریفلیکٹ ہوگی اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف، پھر آپ نے یہاں پر بھی ایک اور میرر رکھ دیا، تو ایک سائیکل آف لائٹ شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہاں سے اسٹارٹ ہوئی، اوپر پہنچی، میرر ٹو پہ آئی، میرر تھری پہ آئی، خود بہت ایک سائیکل شروع ہو جائے گا، انفائنائٹ سرکل شروع ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسا سلسلہ، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں دو آئینوں کو سامنے رکھیں، اس کا عکس اس میں اور اس کا عکس اس میں، اور یہ آپ کو زیادہ کہاں نظر آتا ہے؟ جب آپ جائیں وہ نائی کی دکان پہ جاتے ہیں بال بنوانے، جی وہ عکس چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن نظر آنا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ایک انفائنائٹ سلسلہ، لامتناہی سلسلہ۔ تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا لائٹ کا، یعنی یہاں سے لائٹ شروع کی، یہاں میرر ون رکھا، یہاں سے ریفلیکٹ ہوئی، میرر ٹو پہ آئی، میرر ٹو سے ریفلیکٹ ہوئی، میرر تھری پہ آئی، ایک سائیکل شروع ہو گیا۔ اسی کو بے نہیں آپ اسی طرح رکھیں، یہ انسان ہے، جہاں سے لائٹ شروع کی ہے یہ انسان ہے، یہ خدا ہے اوپر، یہ اس کی سوسائٹی ہے۔ آ رہا ہے نہیں آ رہا نظر؟ ٹھیک ہے، یہ انسان ہے، وہی ٹرائنگل جو لائٹ کا تھا، یہ خدا ہے، یہ سوسائٹی ہے۔ अब उस एक्सपेरिमेंट को सामने रखें और फिर मुझे बताएं कि अगर एक इंसान सही वे से जिस तरह लाइट का एक एंगल था वो अगर मेरे यहाँ रखा हुआ है, लेकिन लाइट अगर यूं है तो क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट मिरर से? नहीं, अगर सही डायरेक्शन में उसको यानी उसका एंगल सही किया जाए तो वो फिर जाके रिफ्लेक्ट होगी, यानी वो जाके आईने पर टकराए, टकराने के बाद मुनक्किस रिफ्लेक्ट हो। एक इंसान जो सही वे से खुदा तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, उसे कहाँ आना चाहिए? जी कहाँ आना चाहिए? सोसाइटी में आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि रिफ्लेक्ट होती है तो नीचे की तरफ आएगी, वो यहाँ सोसाइटी में आ गया। वो इंसान जो सही वे से खुदा से होकर सोसाइटी में पहुँचे उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, उसे कहाँ जाना चाहिए? जी दोबारा इंसान तक पहुँचना चाहिए ना, इसी को तौहीद कहते हैं। क्या मतलब? यानी जो इंसान सही वे से, सही वे, सही एंगल, सही यूं कहूँ डायरेक्शन, बाद औकात आप सही रास्ते पे खड़े होते हैं लेकिन आपकी डायरेक्शन सही नहीं होती। आपने जाना टावर है और आप सौरभ गोड की तरफ जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। आपको पता है शाहराह पाकिस्तान जो है वो जाती है टावर, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही, डायरेक्शन भी सही होना ज़रूरी है और सही वे भी होना सही होना ज़रूरी है। सही वे से खुदा तक पहुँचेगा वो यकीनन अपनी सोसाइटी में आएगा, और जो इंसान सही तरीके से खुदा से सोसाइटी तक पहुँचेगा वो दोबारा इंसान तक पहुँचेगा। यानी इसका मतलब ये है कि एक इंसान अगर खुदा तक पहुँचे, कुरान सही वे कौन सा है? कुरान का और अहले बैत का रास्ता, बस सही वे खुदा तक पहुँचने का कुरान और अहले बैत का रास्ता है। जैसे जो भी खुदा तक पहुँचेगा तो वो अपनी सोसाइटी में जब खुदा का नूर लेकर आएगा, खुदा की हिदायत लेकर आएगा, तो खुद बहुत सोसाइटी में अच्छे इंसान बनने लगेंगे, नेक इंसान बनने लगेंगे। ये जो हम अपनी दुनिया में देख रहे हैं, तालिबान, अलकायदा, धमाके, फलां जमात, फलां पार्टी, फलां ये, फलां वो, उसकी वजह ये है कि इन्होंने ना खुदा को पहचाना है, ना दुनिया को पहचाना, ना आखरत को पहचाना है। इनके ना उसूल दीन सही, ना उसूल दीन सही है, लिहाजा इनके अमल इंसानी फितरत से हटकर है, इंसानी फितरत से हटकर है। बहरहाल वाकयात बहुत सारे हैं कि मैं इंसानी फितरत से हट कर इनका अमल क्या है अगर बताऊं तो हम अपनी गुफ्तगू से दूर चले जाएंगे। ये तौहीद है, यानी इंसान सही तरीके से खुदा तक पहुंचे, खुदा से नूर लेकर अपनी सोसाइटी में आए और फिर अपनी सोसाइटी को मुनव्वर करे। उसकी बहुत ही वाज़ेह सी मिसाल इमाम खुमैनी की इस मौजूदा दौर में, कि इमाम खुमैनी सही वे से खुदा तक पहुंचे, खुदा से नूर और हिदायत लेकर आए, और उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के नौजवानों में एक हलचल मचा दी। आज आप देखें कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं जिनमें आज ये अवामी तहरीकें उठ रही हैं, ये सब किसका नतीजा है? इमाम खुमैनी की लाइव इस्लामी इनकलाब का नतीजा, जो 1979 में आया था। आज जो आप यहाँ बैठे हैं ये किसका नतीजा है? ये इमाम खुमैनी की उसी कोशिश का नतीजा है कि अपनी सोसाइटी को मुनव्वर करें। लिहाजा ये तौहीद है। अब इस तौहीद का असर क्या है? इस तौहीद का असर ये होता है, वही मैंने कहा, जैसी आइडियोलॉजी होती है वैसा ही अमल होता है। जैसा मौसम होगा वैसा ही लिबास होगा। अगर सर्द मौसम है तो कोई बनियान पहन के नहीं जाएगा, गर्म मौसम है तो कोई ओवरकोट पहन के नहीं जाएगा। जैसी आइडियोलॉजी है वैसा ही अमल होगा। लिहाजा जब आप कहते हैं खुदा एक है तो फिर हमें भी अपने तमाम कामों का मकसद एक होना चाहिए। हमारे तमाम कामों का मकसद अगर खुदा एक है तो फिर मैं इसके लिए इसकी वाह वाह के लिए, उसकी शोहरत के लिए, वो मेरी तारीफ़ करे, मैं अमल अंजाम नहीं दूंगा। मेरे तमाम कामों का मकसद, मेरी तमाम ज़िंदगी का महवर कौन होगा? खुदा होगा। ये तौहीद है। लिहाजा अगर इंसान इस नीयत से तौहीद को कबूल करे, एक्सेप्ट करे और उसके मुताबिक अमल अंजाम दे तो वो कामिल इंसान है, कामिल मुसलमान है। उसकी आखिरी मिसाल मैं आपकी खिदमत पेश करूं और आपकी ज़हमत को तमाम करूं, वो ये कि जब आप मार्केट जाते हैं तो एक कंपनी की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर ये फूल भी उन्हीं का है, ये गमला भी उन्हीं का है, ये टेबल भी उन्हीं की है, ये दीवार भी उन्हीं की है, ये पर्दे भी उन्हीं के हैं। मिसाल के तौर पर, चूँकि एक ही कंपनी के हैं लिहाजा उसका एक एक लोगो होता है, एक आर्म होता है जो उसकी तमाम प्रोडक्ट्स पर छपा हुआ होता है, जिससे पता चल जाता है ये इस कंपनी की चीज़ें हैं। खूब उससे अंदाज़ा हो जाता है इस कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है मार्केट में, और ये जो लोगो है इनका, जो आर्म है, ये इस बात की अलामत है कि ये फलां कंपनी की मिल्कियत हैं, ये फलां कंपनी ने इनको मार्केट में ये कंपनी लेके आई है। हम मुसलमान हैं, अगर हम तौहीद के मानने वाले हैं, हम अकीदे तौहीद रखते हैं, इन खुदा को एक मानते हैं, इसका मतलब यह है कि फिर हमारे तमाम कामों पर एक ही स्टैम्प और एक ही आर्म होनी चाहिए। इसीलिए हमें हुक्म दिया गया है कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। उठना है बिस्मिल्लाह, बैठना है बिस्मिल्लाह, खाना है बिस्मिल्लाह, वॉशरूम जाना है बिस्मिल्लाह, हर काम बिस्मिल्लाह कह कर शुरू करें, सिवाय एक जगह। कौन सी जगह? सूरह तौबा की तिलावत करते हुए। वो जो काफरों और मुशरिकों के लिए, लिहाजा खुदा ने कहा कि उनके लिए मुझसे रहमत की उम्मीद मत मांगो क्योंकि वो मेरे दुश्मन हैं। बहरहाल हर काम, यानी जिस तरह, यानी हर काम पे स्टैम्प हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये काम करता हूँ मैं अल्लाह के लिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टैम्प लगा दी, यानी ये काम खुदा का। तौहीद का मतलब यही है कि अगर खुदा एक है तो मेरे कामों का मकसद एक है, मेरे तमाम ज़िंदगी का महवर और मरकज़ एक है। ये तौहीद का बुनियादी असर है। और इस तरह अगर इंसान के तमाम आमाल खुदा के लिए हों, बिस्मिल्लाह के साथ हों, खुदा के लिए हों, तो फिर खुदा उसके तमाम कामों को कबूल करता है अपनी बारगाह में और उसको एक मुमताज़ और आला मुकाम अता करता है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बहरहाल इससे ज़्यादा गुफ्तगु को तुलाने नहीं करूँगा, गुफ्तगु यहीं पे ख़त्म करते हैं कि ये दीन है, खुदा ने इंसान को अक़ल दी है, ये अक़ल उसे दूसरे हैवानात से मुमताज़ बनाती है, दूसरे मखलूक से मुमताज़ बनाती है, और अक़ल की पैरवी के नतीजे में इंसान कामयाब होता है, इंसान उस अक़ल की रोशनी में आइडियोलॉजी हासिल करता है, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक अमल इख्तियार करता है, और उस अमल के नतीजे में इंसान को आलम आखरत में जजा मिलेगी। तीन बुनियादी सवाल हैं, मिन ऐन इला ऐन फी ऐन, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कहाँ खड़े हो, ये तीन बुनियादी सवाल हैं जिनको उसूल दीन का नाम दिया गया, यानी तौहीद, नबूवत और क़यामत। लेकिन इसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड दो और चीज़ें हैं, तौहीद के साथ अदल और इमाम और नबूवत के साथ इमामत। नज़र तौहीद के बारे में मुख्तसर मैंने बताया, उसके दो असरात मैंने ज़िंदगी में बताए, इंशाल्लाह फिर इसके जो मज़ीद तफसील हो सकती है आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। खुदावंद अल्लाह से दुआ है कि हमें दीन इस्लाम पर हकीकी माना में कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद तजवास मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें अकीदत तौहीद की रूह को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को हम सबसे राज़ी खुशनूद फरमा, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मैंने कहा कि जैसा मौसम होता है इंसान अपनी अमली ज़िंदगी में ये काम करता है, जैसा मौसम है वैसे ही लिबास पहनता है, गर्म मौसम गर्म लिबास उसके मुताबिक, सर्द मौसम है उसी के मुताबिक लिबास पहनता है। उसूल दीन फुरू दीन, यानी जब ऐसा तो नहीं होता एक आप सेब के दरख्त लगाएं तो उसमें से आम निकलने लगे, वो रहमान मलिक का ही हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला का ही हो सकता है दरख्त के सेब का दरख्त लगाएं और आम निकले। यानी जैसा बीज होता है, जैसा सीड होता है, जैसा बीज होता है वैसे उसका फल होते हैं। एक दरख्त अपने फल से, अपने पत्तों से पहचाना जाता है, इसलिए हदीस में शिया जो हैं हमारे पत्ते हैं और पत्तों से दरख्त पहचाना जाता है, लिहाजा शिया हम जो है अपने शियों से पहचाने जाते हैं। बहरहाल उसूल दीन यानी तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये दीन की बुनियादें हैं। लिहाजा अब इस बुनियाद से जो दरख्त उगेगा उसकी जो शाखें होंगी वो भी इसी से रिलेटेड होंगी, मरबूत होंगी, हम आहंग होंगी, इनमें कोऑर्डिनेशन पाई जाएगी। बहरहाल ये एक बहुत वसी टॉपिक है कि मैं इन दोनों के रिलेशन को बयान करूं कि توحید النمود محمد قیامت کا نماز روزہ حج زکات خمس جہاد الی آخر سے کیا تعلق ہے؟ بالکل. اور پھر یہ بھی خدا کے احسان ہے ہم پر. اس نے کہا کہ آئیڈیولوجی خود بناؤ تم خود, تمہارے ابا دادا مسلمان تھے یہ قبول نہیں ہے, تم اپنی آئیڈیولوجی خود بناؤ. تم شیعہ ہو تو کیوں ہو, تم مسلمان ہو تو کیوں ہو, تمہارے پاس کیا آرگیومنٹس ہیں, تمہارے پاس کیا دلائل ہیں, کیا دلیل ہے تمہارے پاس شیعہ ہونے کی مسلمان ہونے کی, لہٰذا یہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ بھی خدا کا احسان ہے, خدا نے کہا کہ ایسا نہیں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا میں, پھر میں تمہاری پراپر گائیڈنس کے لیے میں انبیاء کو بھیجوں گا, کتابوں کو بھیجوں گا, اور پھر فروع دین کی شکل میں ایک سسٹم آف یوں کہوں کہ اعمال کا سسٹم تمہیں دوں گا تاکہ تم گمراہ نہ ہو. یعنی ہمیشہ کوآرڈینیشن پائی جائے گی تمہارے آئیڈیالوجی میں, اصول دین میں, اور تمہارے عمل میں اور فروع دین میں. بات واضح ہے؟ قیامت قیام سے ہے, یعنی قائم ہونا, قیامت قائم ہوگی, اور یعنی انسانوں کو اٹھایا جائے گا زمین سے, حشر نکالا جائے گا, پھیلایا جائے گا حشر. معاد عود سے ہے, عین واو دال عود, یعنی لوٹنے کی جگہ. معاد یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر انسان لوٹ کر دوبارہ پہنچے گا, لوٹے گا, اس کو معاد کہتے ہیں. تو معاد کا لفظ استعمال ہوا ہے, قیامت کا لفظ استعمال ہوا ہے. قیامت میں ہے کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کی طرف خود چل کے جاتے ہیں, کچھ وہ ہیں جن کو ڈنڈے مار کے اللہ کی طرف چلایا جاتا ہے, کچھ وہ ہیں جن کو اس بکرے کی طرح لے جایا جائے گا جو قربانی کے بکرا ہوتا ہے. قربانی کے بکرا دیکھا ہے آپ نے, کیسے ہاتھ پر اس طرح کر لیتے, اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا تو نہیں جا رہا ہوتا, میں نہیں جاؤں گا. کچھ انسان ایسے ہوں گے جن کو گھسیٹ کر اللہ کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا, وہ نہیں جانا چاہ رہے ہوں گے. خدا کہے گا نہیں بیٹا, آپ نے آنا ہے, جی جو وہاں کیا ہے دنیا میں اس کا نتیجہ آپ نے پانا ہے. کچھ وہ ہیں جو خود چل کے جاتے ہیں, شہادت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. کچھ کو شہادت نہیں ملتی لیکن صحیفے پہ گامزن رہتے ہیں, یہ بھی اللہ کے اچھے ہیں. کچھ وہ ہیں جو گرتے پڑتے جاتے ہیں, کچھ وہ ہیں جن کو زبردستی کھینچ کے لے جایا جائے گا. تو مختلف تعبیریں استعمال ہوئی ہیں قرآن میں, معاد کا لفظ استعمال ہے اور قیامت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پانی دے دی.